कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषु। आगे दे दो, यू कैन गिव यू। आज बड़े खुशी की बात है कि हम लोग भारत के वृंदावन से, मथुरा से निकलकर पूर्वी विश्व के मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के बहुत से, ऑस्ट्रेलिया के प्राय सभी बड़े बड़े शहरों में, और वहाँ से फिर फिजी में हम लोग आए। यहाँ भी हम लोगों ने नादी में और सुबह में लंबासा में अभी कुछ प्रचार कर यहाँ आए हैं। विशेष करके हम हिंदू भारत के प्रवासियों से मिल करके बड़े खुशी हो रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं वो फेस भारतीय जैसे सभी लग रहे हैं, तो दो एक बातें कहने का अवसर है, इसलिए मैं कहूँगा। यूँ तो आज हम लोगों के महाप्रभु के परिकरों में आज अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव दिवस है। आज से 500 वर्ष पहले कृष्ण श्रीमती राधिका जी के प्रेम भाव को लेकर जगत को कुछ प्रेम की शिक्षा देने के लिए, धर्म की शिक्षा देने के लिए नवदीप धाम में पधारे थे। उनके परिकरों में अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार कहे जाते हैं। आज उनका आविर्भाव तिथि है। ये एक वैदिक सत्य है, नित्य सत्य है। कोई चीज माने या न माने, भगवान है या नहीं बहुत दूर की बात, किंतु एक चीज सत्य है जिसको सभी धर्मी विधर्मी जो कुछ हो रहे हैं उसको मानने के लिए बाध्य हैं। इस जगत में मृत्यु जरूर है, इसको डिनाई कोई नहीं कर सकता। इसलिए मृत्यु जरूर जगत में एक सत्य है। और दूसरी बात, इस जगत में ये भी सत्य है कि जो जन्मे हैं मरना तो जरूर पड़ेगा, किंतु उनको जरूर बूढ़ा होना होगा। यदि बच गए तो बूढ़ी होना होगा, और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। बुढ़ापे का दुख और संसार में तरह तरह की के कष्ट हैं, रोग हैं, इसको भी कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। और ये जगत आया कहां से? बुद्धिमान पुरुष वह है जो यह सोचता है कि आज ऐसा काम करूं जैसे दिन में कोई दुख ना आए, कोई प्रॉब्लम ना, किंतु उससे भी वो व्यक्ति सुखी है जो ये विचार करता है कि हमारे जीवन में कोई दुख ना आए। और उससे भी वो सुखी है और बुद्धिमान कहलाएगा जो आने वाले जन्मों में भी हम कभी भी दुखी न रहें, सब समय सुखी रहें। अभी देखिए, अभी जिस स्टेज में आप लोग हैं, हो सकता है कि आप अभी सुखी हों, किंतु एक दिन सबको जरूर बूढ़ा होना होगा, आंखें कमजोर हो जाएंगी, दांत भी कमजोर हो जाएगा, केश श्वेत हो जाएंगे, अंत में लकड़ी पकड़ करके चलना पड़ेगा, अंत में यह शरीर छोड़ देना पड़ेगा। जिस समय छोड़ देना पड़ेगा उसमें क्या करेंगे? एक राजा था, बहुत ही धनी मानी, सब प्रकार से सुखी था। उसकी स्त्री भी बहुत बुद्धिमती और बड़ी रूपवती गुणवती थी, वो भी बहुत था। उसके लड़के भी बड़े सुशील थे। एक दिन एक संत आया उनके पास में और कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं। राजा ने कहा, जिसे आया होगा तो कुछ मांगने के लिए आया होगा। आजकल के जितने भी डिवोटीज होते हैं वो मांगने के लिए जाते हैं, इसलिए वो डर गया। कहा जिसे ये जरूर कुछ मांगने के, कह दो कल परसों मिल लेगा, आज समय नहीं, आज मैं बहुत व्यस्त हूं। तो प्रहरी ने उनको कह दिया, वो लौट गया। वो तीन चार दिन के बाद में फिर आया। फिर राजा ने कहा, जब फिर वही आफत आई, फिर उसको उन्होंने कहा दिया जैसा फिर पीछे मिल लेना। तो वो राजा से हताश होकर के चला गया रानी के पास में और खबर दिया, महारानी जी मैं एक संत हूं, आपसे मिलना चाहता हूं। तो पुरुष लोग बड़े हो सकते हैं कि निष्ठुर हों, किंतु पत्नियां उनकी बहुत सुशील होती है। भिक्षा मांगने पर भी मथुरा के ब्राह्मणों ने उनको कृष्ण को नहीं खिलाया और उनकी पत्नियों ने थाल में परोस करके भर भर करके कृष्ण के पास में ले ली। पीछे वो पछताने लगे कि हमारी विद्या को अधिकार है, हमारे ब्राह्मण होने का अधिकार है, यज्ञ करने का अधिकार है, ये स्त्रियां कुछ भी नहीं जान करके कृष्ण की इतनी सेवा की और हम लोग ऐसे दुर्भाग्य जो उस कृष्ण परब्रह्म से वंचित रह गए। इसलिए रानी के पास में गया। रानी ने बहुत जल्दी से बोला, जाओ जल्दी से बुला लाओ, और उसका आसन दे करके बैठाया। बड़े प्रेम से पूछा, जी महात्मा जी आप क्या चाहते हैं? कहा मैं कुछ चाहता नहीं, मैं भगवत भजन करता हूं, किंतु साथ साथ में मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर भी हूं, कुछ जानता हूं, ये सब हाथ देखना रेखाएं जानना जानता हूं। मैंने विचार किया ये राजा बहुत ही भले आदमी हैं, किंतु 15 दिन में इनकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए आपको सूचित करने के लिए आया। राजा ने अवकाश नहीं दिया यह, इसलिए आपको कहने के लिए आया राजा, ये अब 15 दिन में से 5 दिन तो निकल गए, अब 10 दिन बाकी है, इसमें इनको मरना है, इसलिए जो कुछ करना है आप प्रस्तुत होकर के कर लीजिए। रानी घबरा गई और राजा को बुलवाया। इनसे तो महात्मा जी से उत्तर नहीं मिल सका, किंतु रानी के ऑर्डर को वो डिनाई नहीं कर सका। वो आया या और इतने में ये तो महात्मा जी तो वहां से चंपट हो गए, चले गए। वो राजा आया कि किसने मुख को जल्दी से बुलाया? तो एक महात्मा आया, वो कह रहा था कि मैं सोल्जर भी हूँ, भगवत भजन करता हूँ। तो ये राजा जी अब 10 दिन के अंदर में मिल जाएंगे, मरेंगे, अवश्य मरेंगे, और ये कह करके वो चला गया। जो कुछ करना है कर लो, उन्होंने कहा। अब क्या करें? महाराज ने कहा जी सारी तो मैंने गलती की, मैंने उससे मिला नहीं, ढूंढवाया तो देखो सिर मुंडन होगा, यहाँ पर उर्ध कुंड होगा, गले में तुलसी होगी, हाथ में माला और वो हरिनाम करता होगा, जल्दी से ढूंढ, गौर वर्ण का होगा, गोराय रंग का, बुला लो। खोजते खोजते नदी के किनारे देखा जी वो बैठा था, उसको बुला लाया। अरे महात्मा जी आपने ये कहा जी मैं मर जाऊंगा 10 दिन में, तो जरूर मरेंगे, गारंटी है, हमको यहीं पर रख दीजिए बंद करके, और देखिए जरूर आप मरेंगे, कोई भी बचा नहीं सकता, विश्व में ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो बचा ले। अब तो राजा घबरा गया जी क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, यही तो मैं कहने आया था, जिम चित जाओ तुम, जो कुछ करना है कर लो। राजा घबरा गया। उन्होंने कहा जी घबराने की तो जरूरत नहीं है, तुमने जीवन में बहुत पुण्य कार्य किए हैं, माता पिता की सेवा की है, गरीबों की सहायता की है और भी किया है, किंतु थोड़ी सी गलतियां हुई हैं तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, मैं ये भी देख रहा हूं। स्वर्ग में जाओगे और वहां पर सब प्रकार की सुविधाएं तुम्हारे लिए मिलेगी, जो यहां पर सुख नहीं है उससे और अधिक सुख मिलेंगे। किंतु एक बात है, जो वहां पर आजकल मच्छर हो गए हैं किसी प्रकार से, बड़े बड़े इंडिया से वो लोग चले गए हैं, काजन कैसे वो लोग, और वहां पर बड़े बड़े काले काले हैं, जिसको डस्ट देंगे उसको मच्छर, ये मलेरिया बुखार हो जाता है, और मलेरिया बुखार उतरता नहीं है, वो लेकर के ही प्राण जाता है। तो आप ऐसा कीजिए कि वहां पर मच्छरदानी भी बड़ी सुंदर है, सब कुछ है, किंतु मच्छरदानी जो आपके मिलेगी, जो बेड पर रहेगा उसमें कोने में थोड़ा सा कटा हुआ है, वहां पर सुई और धागा नहीं है, बाकी सब कुछ है। आप यहां से थोड़ा सा एक सुई धागा समझते हैं, दिस इज लेंथ, यहां से ले जाए और बाकी वहां पर सब कुछ आपको मिलेगा। मैं कैसे ले जा सकता सुई धागा? तो तुमने सारा जीवन क्या किया, क्या जाए सुई धागा भी नहीं ले जा सकता है तो क्या ले जाएगा? इतना जो कमाया, कमाई का इतना, तुम्हारे इतना बड़ा राज्य, उसमें बड़े बड़ी फैक्ट्रियां थी और क्या था, तुम्हारे कितने सब मैनेजर और ये सब क्या क्या थे, इतनी अपार संपत्ति, और तुम सुई धागा नहीं ले जा सकते? अभी हम गए थे उनके फैक्ट्री में, देखा जो सोप बन रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं, चावल बन रहे हैं, तावल बन रहा है, कॉकोनट, जीवन की सारी आवश्यकताएं इनकी फैक्ट्री में, देखा मैनेजर तो गिनते गिनते मैं थक गया, जे कितने मैनेजर हैं। मैंने पूछा जी भाई डायरेक्टर कौन है? तो इतना वैभव में से तुम एक निर्डल और थ्रेड नहीं लेकर की जा सकता तो क्या ले जा सकता है? किस लिए किया ये इतना जीवन जो बर्बाद किया, किस लिए जो नहीं लिया? अरे बुद्धिमान है जो आगे की भी चिंता करे, तुम इसकी चिंता क्यों नहीं किया? तुमने देखा नहीं है तुम्हारे पिताजी मर गए, पिताजी के पिताजी मर गए, वो भी कुछ साथ नहीं ले जा सके, उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो तुमने उसको जला दिया, विचार तो करो। कहा जी अब तो मैं आपके चरणों में अब पड़ा हूं, आप ही हमको बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, मेरी बात मानेगा? आ तो हाँ, देखो भगवान का नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, उल्टा नाम चपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम मरा मरा जप करके ही वाल्मीकि ब्रह्म के समान माने जीवन मरण से अतीत हो गए, सर्वत्र उनकी गति है, कभी भी उनको मरना नहीं है, कभी भी उनको कोई दुख नाम की कैलामिटी, कोई भी देख फेत कुछ नहीं, उस स्थिति को ला। इसलिए तुम भगवान का नाम करो ये 10 दिन, और कुछ तुमको कुछ नहीं करना है, बस कह करके चले गए। और देखा थे उनकी मृत्यु भी नहीं हुई, कुछ नहीं, वो सशरीर ही एकदम सशर बैकुंठ लोक को पहुंच गए, इस जगत की तो छोड़ना ही, और स्वर्ग में जाकर के फिर वहां से लौटना पड़ता है, और उनको लौटने की जरूरत नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करह विचार सुजन मन माही, नाम लेते भव सिंधु सुख जाए। भव माने क्या? भव माने होना, क्या होना? पुनः पुनः जन्म ना, पुनः पुनः मरण, ऐसा कोई जगत में है जो मरेगा नहीं? अवश्य मरेगा। इसलिए बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो अपना लोक परलोक सभी संवार जाता है, बना जाता है। यह समझिए कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग ये शरीर स्थूल है, हम लोग हैं क्या? वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। इस चीज को समझ, कोई पुरुष होकर के हैं, कोई स्त्री, कोई गोरा, कोई काला, कोई मछली, कोई बेड़, कोई कुछ, अपने कर्मों की वजह से हुए हैं, किंतु यथार्थ में हम ट्रांसडेंटल हैं, नित्य सत्य हैं, हमारा जन्म मरण नहीं है। जिन चीजों को आप देख रहे हैं इनमें परिवर्तन और ध्वंस है, किंतु एक ऐसी दृष्टि है जो हमारे गुरु वर्गों से मिलती है, जो कृष्ण से आती है, जगत गुरु कृष्ण से आती है, कैसे आती है? गुरु परंपरा की धारा से। इस जगत में भी आपको हारमोनियम बजाना है तो किसी से सीखना पड़ेगा। हमने इन लोगों से पूछा पूंजा ब्रदर से, ये आप लोगों ने ये सब बिजनेस कहां से सीखा? सीखा कहां से? अजय फादर से सीखा, उनके ऋणी है ना, वो कहां से सीखे होंगे? उच्च उन्होंने जो सीखा वो कहां से सीखा? इस तरह से गुरु परंपरा की धारा होती है। ये ट्रांसडेंटल नॉलेज है। इस जगत के संबंध में जो ज्ञान है जो नष्ट हो जाते हैं, जो असल चीज को देंगे नहीं, संसारिक सुखों को, वो तो रह जाएगा भाई इस चीज को। इसलिए बुद्धिमान पुरुष हैं जो इसको करते हुए भी ये समझें कि हम लोग नित्य सनातन तत्व आत्मा है जो भगवान का अंश है। ये भगवान ही जगत को स्थिर रखे हैं। ये मैनेजमेंट जो है मूल उनके हाथों में है। उनके बिना ये समुद्र में ज्वार भाटा नहीं आएगी, सूर्य नहीं उग सकते। वो एक एक मिनट में एक एक बार अपनी चाल को बदलते हैं, कभी एक एक मिनट कम में उगते हैं, कभी एक एक मिनट बाद में उगते हैं। ये सब हम लोगों को कर्मों का नियंत्रण करते हैं। इसलिए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इसलिए इनको जरूर मानिए। उनको भूलने की वजह से हमारी ये दशा है। कुछ अच्छे कर्म किए बस उसमें भोग रहे हैं। अच्छा, उस दिन के बाद में फिर आप जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को, वो विश्व विजय करना चाहता था, कुछ विजय भी किया और अंत में मित्र सेनाओं के साथ में ऐसे पड़ा, समुद्र उसे बांध करके जेल में बंद करके और समुद्र में डुबा दिया। हिटलर का तो आप लोग जानते ही हैं। हमारे इतिहास में रावण को जानते हैं सोने की लंका, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती और विमान की जरूरत नहीं, शरीर ही जहन से जहां तहां चला जाए। हिरण्यकश्यपु न दिन में मरे न रात में मरे और सब समय जुआ अवस्था, वज्र जैसा शरीर हो, मरण उसका ही नहीं है, कहां गया वो सब? एक क्षण के अंदर में हिरण्यकश्यपु ने उसको। इसलिए कल के लिए सोचिए आप लोग भी। आप लोग ये मत समझिए जो सुखी हैं, तो अभी ऐसा कोई नहीं होगा जिसको कोई न कोई रोग न हो। और सबसे बड़ा ये रोग है जो बुढ़ापे की तरफ में हम बढ़ रहे हैं। कल के लिए सोचिए, परसों के लिए सोचिए, तब बुद्धिमत्ता है। यही हमारे भारतीय का ये संदेश है। तमसार मा ज्योतिर्गमय। ये जगत में जो चल रहे हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं, ये तमसांधकार है। कहां जा रहे हैं कोई पता नहीं। समझ रहे हैं कि यही सुख है, किंतु ये सुख नहीं है भाई। कुछ दिनों के लिए क्षणिक सुख है, कुछ क्षणिक समय के लिए ये सौंदर्य है, ये बल है। एक न एक दिन ये जाएगा। इस पर खूब अच्छी तरह से विचार करके देखिए। इसलिए हम कल जीवन के अंत तक, और जब ये जीवात्मा अमर अजर अमर है, तो ये कैसे नित्य काल के लिए सुखी हो सकेगा, इसके लिए विचार करना, यही परम बुद्धिमत्ता है। भारत माने क्या? भारत एक जमीन नहीं है, भारत एक थ्योरी है, एक विचारधारा है। भारत, भारतीय जितने भी शब्द हैं, चाहे गुजराती हो, बंगाली हो, चाहे कोई भी हो, संस्कृत, संस्कृत से सब निकले हैं। इसका कोई न कुछ अर्थ होता है। भारत, भा माने प्रकाश, रत माने उसमें लगना। भारत माने जहां पर ज्ञान का इतना विकास है, आत्मज्ञान का, भगवत तत्व ज्ञान का, जो उसको जो छू देता है, थोड़ा सा स्पर्श कर देता है, अजर अमर हो जाता है। इतना प्रकाश। वो प्रकाश क्या है? हम सब भगवान के नित्य दास हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। संस्कृत में ममई वांसो जीव लोके जीव भूत। ये गीता, हमारे वेदों में ऐसा कहा गया, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम आनंदमय अभ्यासात इत्यादि वेदांत सूत्र और वेदों में कहा हम नित्य के संतान हैं, हम प्रभु के संतान हैं। हम उनको भूल करके, जैसे पिता को भूल करके कोई इधर उधर भटक रहा, ऐसे में अपने परम पिता, परम गुरु, परम सुहृद, परम मित्र, उनको हम भूल करके इस संसार में जन्म मरण में लगे हुए हैं। इसलिए प्यारे भाइयों, आप लोग भारतवासी विशेषकर इन चीजों को समझेंगे, अपने घर का काम कीजिए खूब अच्छी तरह से कीजिए, कोई भी बात नहीं, किंतु कुछ भगवत भाव मिलाकर के करेंगे, नास्तिक नहीं, ईश्वर अनास्ति वेद अनास्ति ऐसा नहीं, हम देखते ही नहीं है इसलिए मानेंगे नहीं, कहां है भगवान, कहां देखते हैं। अरे तुम तो अपने भीतर में नहीं देख सकते, आंखें तुम्हारी आंखें, तुम अपनी आंख को नहीं देख सकती, और की तो बात क्या, ये आंखें बिना सूर्य के या किसी चीज के लाइट के ये नहीं देख सकती, कोई भी चीज कुछ लेना पड़ेगा उसके सहायता से ये देखेगी, ये क्या देखेगी, और अंत में इसकी रोशनी नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे नहीं देखा जाए। एक आदमी ने हमारे गुरु जी से प्रश्न किया, हम लोग ट्रेन सफर कर रहे थे गुरु जी के साथ में, भगवान को कहां कोई देखा है, जो आप लोग भगवान 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 कर रहे हैं, ये तो सेंटिमेंटल, लोगों ने भगवान शब्द की सृष्टि की है, ये हम लोगों ने सृष्टि की भगवान को, भगवान ने हमको नहीं, जितने डरपोक आदमी थे एक मान लिया ये भगवान है, ये सेंटिमेंटल, भगवान कहां है कोई देखता है। तो गुरु जी ने कहा जी तुम जो देखता है वही मानता है, तो हाँ हम तो वही मानेंगे और दूसरा कुछ नहीं मानते, कहिए तुम सब मानता है, तो कैसे, अच्छा बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। तो उन्होंने बुझा जी बोला जी मेरे पिताजी का नाम राम मूर्ति या कुछ कहा। अच्छा तुम ऐसा कोई प्रूफ दो जो तुमने देखा जैसे यही तुम्हारे पिता हैं, कोई प्रूफ है इसका जो हमारे पिता वही हैं, कोई कह सकता है हाथ उठा करके, यदि मैया ने झूठ बोल दिया तो। अरे तुम तो उसके बहुत दिन के बाद में निकले, उस समय माता पिता का जब संयोग से तुम पैदा हुए, जो बीज पड़ा उस समय तुम था, इसलिए गलत बात है यह कहना, मैया ने कहा, मैया के बात पे विश्वास करना पड़ेगा, यहां वही तुम्हारे बाप हैं, और यदि मैया ने गलत कह दिया तो माया मैया पर ऊपर विश्वास नहीं हुआ तो फिर तुम्हारे क्या कहेंगे उसको। तो इसलिए कुछ ऐसी ट्रूथ हैं, फंडामेंटल ट्रूथ जो फंडामेंटल है, इसलिए इस विश्व का सृजन करने बनाने वाला सब कुछ ये कृष्ण है, राम इत्यादि अलग नहीं है, उन्हीं के एक भाव से उनको देखा जाता है, उपासना के तारतम्य से, ये सब चीजें इन आंखों से नहीं दिखेंगे, इसके लिए गुरु की जरूरत है, संसारी आदमी नहीं देख सकता, उसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़े। आप बतला सकते हैं कि यहां आग है कि नहीं, बेटी यहां आग है, तू बतला तो, नहीं है ना, आग है, तुम्हारे पेट में भी आग है, शरीर में नहीं तो तुम हजम नहीं कर सकते, अभी कोई चीज को लेकर के रगड़ देना आग निकल जाएगी, यदि माचिस होगी तो ऐसा कर दो फिर, या वो क्या एक होता है ना, देखा दो, सर्वत्र आग है, ऐसा कोई चीज नहीं है जहां आग नहीं है, ऐसे ब्रह्म व्यापक है, भगवान व्यापक है, हम देख नहीं पाते, अणु अणु में परमाणु में वो है, वो हमारा सब कुछ जानता है, हम उसे नहीं जानते। इसलिए भाइयों, इस हमारे वैदिक शब्द में, हमारे वेद उपनिषद गीता रामायण हमारी माताएं हैं, माताएं झूठ बोल देंगी, गीता भागवत रामायण ये झूठ कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि ये भगवान के मुखार के बिंद की बातें हैं, ये तुलसी की रामायण मत समझना, ये तुलसीदास जी ने लिख दिया, क्या लिखा उन्होंने, भगवान ने अपने ज्ञान की प्रेरणा दी और प्रेरणा देने से उन्होंने लिखा, अपने उन्होंने नहीं, उनके गुरु के माध्यम से वो ज्ञान है, वाल्मीकि जी को नारद जी ने दिया, नारद को कहां से आया, ब्रह्मा से आया, ब्रह्मा जी को किसने दिया, स्वयं कृष्ण ने। इस तरह से इन चीजों को समझना चाहिए, इसलिए विचार करके और आगे नहीं, कल क्या होगा। अभी हमारे एक शिष्य इंग्लैंड में गए, वहां पर करोड़ों रुपए उनके दैनिक आमदनी है उस बड़ी कंपनी के। उन्होंने कहा कि इतना जो कमाते हैं, आपके मरने के बाद में क्या होगा। दोनों हाथ से पकड़ लिया शीश। मैंने कभी सोचा नहीं भाई, मैं तो पागल हो गया, मैं क्या करूं, मरना तो जरूर पड़ेगा, उस समय क्या होगा, मैं कोई विचार ही नहीं, पागल जैसे हो गए। आप लोग असहमत होंगे, पहले से विचार करके कीजिए। इसलिए जब से ये ज्ञान है हुआ, तभी से इस विषय का अनुसंधान करें, जीवन में कैसे सुखी रह सकती है। जीवन में सुखी रहना एक कला है, ये बिना बिनु सत्संग न पाव ही प्राणी, बिना सत्संग के नहीं मिल सकता है। अपने ज्ञान को सीमित समझेंगे, यह ज्ञान ट्रांसडेंटल नहीं है, लौकिक ज्ञान है। इसका अभी पागल हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, इसका कोई भी मूल्य नहीं है। आंखें हैं, नहीं भी रह सकती हैं, कोई अत्यंत सुंदर शरीर है, हो सकता है कि वो लुंज पुंज हो जाए। इसलिए भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। इसलिए भारत है, ये दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान वहां पर है। और वो कैसे है, इतना सहज और सरल है कि जैसा आपका भाव है वैसे उनको सरेंडर कर दीजिए। प्रभु मैं तुम्हारा हूं, आप मेरे हैं, कुछ नहीं करना है। मुसलमानों को 10 बार उठना और बैठना पड़ता है, नमाज पढ़ना पड़ता है, परिश्रम है ना? किंतु हमारे यहां उठो बैठो भी मत, जहां पलंग पर बैठो जैसे बैठो हो, प्रभु का एक बार राम नाम कृष्ण नाम कह दिया, सब सहज। यदि हृदय से नहीं आता तो ऐसे भी कह दो ना? इसकी प्राचीन उपाख्याने हैं हमारे वेदों में, उपनिषदों में, भागवत में। अजामिल कैसा एक, ये हमारे वाल्मीकि जी कैसे, और एक उल्टा नाम मरा कहने से और देखिए हो गया राम राम। इसलिए इसको साधारण चीज मत समझेंगे। इसलिए सभी काम कीजिए, सवेरे एक बार हाथ जोड़ करके प्रभु को, हे प्रभु मैं आपको देख नहीं पाता, बहुत अज्ञानी हूं, आप मुझ पर कृपा करें, बस इतना ही कहना है। आप माला जो फेरेंगे यही कोई जरूरी नहीं है, ये तो पीछे देखा जाएगा। पहले ऐसे तो विश्वास तो कीजिए कि प्रभु हैं और हमको कंट्रोल करते हैं, हमारे ऊपर बड़े दयालु हैं। भगवान निराकार हैं ऐसा मत सोचेंगे, वो नहीं दिखाई पड़ते हैं इसलिए, ऐसा नहीं। अरे क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा है क्या, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। जब उनका अपना ही इमेज नहीं है तो कहां से क्रिएट करेंगे। इन्ना अल्लाह का खला का मेन सूरत ही, उनके कुरान में भी ऐसे, कुरान शरीफ में है क्या, अपने सूरत के अनुसार उन्होंने बनाया इसको, मनुष्यों को, ऐसा कोई नहीं। किंतु उस थोरली विचार नहीं कर पाते। हमारे सनातन धर्म में, वेदों में से लेकर के अब तक इसके ज्वलन सब उदाहरण और प्रमाण है। इसलिए प्रभु पर ऊपर में विश्वास रखेंगे, नास्तिक मत बनेंगे। ये जगत ही सब सुख का कारण है ऐसा मत समझेंगे, ये तो जीवन निर्वाह करने की एक कला है, उसमें फंस न जाएंगे। उनको स्मरण करेंगे बस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक पैसा खर्च नहीं है, कैसे का एक पैसे का भी कोई खर्च नहीं है, एनर्जी भी नहीं जानी है, कोई भी एनर्जी, आपका समय नष्ट नहीं होगा। आप कहेंगे हमारा समय बर्बाद हो जाएगा, तो आप लोग तो भारत के हैं, तेली जानते हैं किसको कहते थे, तेली जो तेल पेरते थे, कलहू लगा करके, बैलों को ठोली लगा करके तेल पेरते थे, तेल निकलता था। आज जैसा घटिया तेल नहीं, उस तेल को यहां पर थोड़ा सा रखने से ही आंसू आ जाते, और इतना सुगंध है। आजकल का घी भी उस तेल को, आजकल तेल ही नहीं है तो तेली, वो तेल फेरता था दिन भर, हाथ 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 उस पर बैठ करके और घुमाता था, समय नहीं। एक दिन नारद ने, अरे भले मानुष, तू दिन भर हाथ हाथ करता है, बैल चला करके और तेल फेरता है, अरे एक बार भगवान का नाम तो कर, राम नाम तो कर। क्या महाराज जी कहूं,
मैं जानता हूं कि अच्छी चीज है, किंतु मैं कर नहीं पाता, मुझे समय नहीं है कि मैं कर सकूं। समय नहीं है, तू खाता है, तू टट्टी जाता है, पेशाब करता है, तुमको समय नहीं मिलता है। अब तो उस समय करने से होगा तो जरूर होगा। अच्छा आज मैं टट्टी करने के समय में जाऊंगा जंगल में, उस समय में जरूर कर लूंगा। तो बस समय तो और नहीं मिला, टट्टी समय लोटा उठाया भारतीय, जैसे कि बाथरूम जो होता है ना स्वाभाविक इंटरनेशनल बाथरूम में वो गया मैदान में, और वहां पर टट्टी करते समय राम राम दो तीन बार किया। किंतु एक नियम है, जहां राम नाम होगा वह हनुमान जी जरूर पहुंच जाएंगे। चाहे करोड़ आदमी एक साथ टट्टी बैठे हैं या नाम इधर उधर कर रहे हैं, रामायण हो, सब जगह एक एक शरीर धारण करके वो पहुंच जाते हैं। तो वहां भी पहुंच गए, देखा ये तो बड़ा बदमाश तेली, ये स्नान करके नहीं कर रहा है, ये टट्टी करते हुए अपवित्र होकर के ये कर रहा है। उन्होंने उठाया और एक लात जम करके दिया। लात ऐसी दी जो कुंभकर्ण को लगते ही वो गिर गया, और रावण भी गिर गया, दसों मुख में मट्टी भर गई, वो गिर गया, मेघनाथ गिर गए, कोई बचा नहीं। और ये तेली हरे कृष्ण कहते हुए, हरे राम राम कहते हुए शौच किया और आराम के साथ में चला गया। अजी क्या बात हुई, इसको मैंने इतने जोर से मारा, इसको कुछ नहीं हुआ, क्या बात हुई। बहुत चिंतित रहे और आराम के साथ वो चला गया राम राम करता हुआ। थोड़ी देर के बाद में जब शाम हुई तो राम ये हनुमान जी राम के दरबार में पहुंचे और वहां पर सेवा करने के लिए उपस्थित हुए। जब वहां पर गए तो देखा आज राम कमर पर हाथ रखे हुए ओह आह कर रहे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आज आपको क्या हो कह गया, अतः तुमने आज ऐसी जो जम करके हमारे पीठ की धुलाई की कि मेरे रीढ़ और पसली एक हो गई। तो मैं प्रभु आपको मैं लात से मारूंगा, तो तुम नहीं तो कौन मारा। अरे तेली जबकि मेरा नाम कर रहा था, नाम और नामी दोनों एक है, नाम और दयालु है, मेरा स्वरूप ही नाम है। अभी गधा कहने से गधा नहीं आ जाएगा, किंतु राम कहने से, कृष्ण कहने से साथ ही साथ वो कहां नहीं है, इसलिए जरूर आ जाते हैं। तो मैं वहां झट जब उसने राम किया और मैं पहुंच गया, और तुमने जो लात मारी वो हमारे पीठ पर पड़ी, उसके पीठ पर नहीं, इसलिए उसका कुछ नहीं हो, किंतु हमारी तो पीठ एकदम ये हो गई, रीढ़ भी टूट गई। हनुमान जी बोले प्रभु आज से मैं कान पकड़ता हूं, कभी कोई भी किसी अवस्था में भी भगवान का नाम करे मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। तो ये समझिए कि भगवान का नाम भगवान से भी दयालु है। आप ऑफिस में हैं और कोई नहीं वहां पर है, कर ले तो क्या हर्ज है, ठीक है। पलंग पर आए सोने जा रहे हो, प्रसाद पा लिया हो, सोने का समय है, और उस समय क्या चिंता करेंगे, ऑफिस में ये काम हुआ, यहाँ पर गड़बड़ी है, यहाँ पर ये ठीक करना है, वहां पर माल भेजना है, यहाँ पर माल प्रोडक्ट करना है, ये करना है, वो करना है। यदि वकील हैं तो सब जितने आपके क्लाइंट के जितने हैं फाइल आपके दिमाग में घूम रही है। टीचर हैं तो और सब कितनी प्रॉब्लम, घर में रसोई की कोई पत्नी है तो रसोई की ही चिंता हो रही है, कल कहां से क्या चीज आएगा, कैसे होगा, क्या होगा। और हमारे पति एक गर्लफ्रेंड रख लिया, अब ये समस्या मैं क्या करूं। वो कभी एक दूसरी औरत को प्यार करते हैं, मैं सब कुछ सह सकती हूं, ये नहीं सह सकती, मैं तो किरासन तेल या कोई चीज डाल करके स्पिरिट में जल मरूंगी, बड़ी भारी समस्या। पति ने देखा जैसे आ रही ये तो बहुत प्यार ऊपर से करती है, किंतु इसका एक बॉयफ्रेंड है, देखने ऊपर से बस खूब लोग सुखी शांति से हैं, किंतु ऐसा कोई है ही ये प्रॉब्लम नहीं। किंतु उसी समय में ये सब प्रॉब्लम रहे एक बार कह दो तो बड़े प्यार के साथ में हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सो जाओ, गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी खाने के लिए। ये चिंता नहीं करने की एक लड़की हमारी में शादी में हमने 10 लाख रुपए खर्च किया और हमारी 5 लड़कियां रात में नींद आएगी, नहीं आ सकती, आजकल बहुत कसम कसम चल रहा है, रसम कसम नौकरी नहीं मिलती भारत में, तो नौकरी मिलना बराबर कठिन है, इसलिए आप लोग इस धर्म में आ गए, आपके पूर्वज भी लोग भी इसीलिए आए, मैं जानता हूं। वहां के शहर में कलकत्ते में ही जितने आदमी हैं, ये सारा फिजी मिलकर के ही नहीं, सारा ऑस्ट्रेलिया मिलकर के नहीं है, इसलिए बड़ी समस्या थी, इसलिए आप लोग छिटक फिटक करके हमसे इधर में आ गए। आप लोग छिटक सकते हैं, हम लोग नहीं छिटकेंगे, हम जहां आप लोग रहेंगे वहीं पर जाएंगे और आपको याद दिलाएंगे, इसलिए हम भारत से यही संदेश लेकर के आए हैं। चलते फिरते उठते बैठते जहां कहीं भी आपको समय मिल जाए, प्रभु को नाम लेने में कोई एनर्जी नहीं लगती, खर्च नहीं लगता, पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। हम आप लोगों से पैसा नहीं लेने आए, ये समझ रखिए, हम अपनी संपत्ति को, ये ज्ञान आप लोगों को देने के लिए आए, इसलिए जहां हम जाते हैं कह देते हैं भैया, जब देखो हम इस्कॉन वाले नहीं हैं, इस्कॉन से नहीं, इस्कॉन के गुरु जो थे वो हमारे गुरु जी के शिष्य थे, हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य थे, किंतु अब ये लोग थोड़ा कुछ डिरेल्ड हो रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, हम लोग पैसे के नहीं, हम एक संपत्ति देने के लिए आए हैं, उस संपत्ति का एक थोड़ा सा भी अंश आप लोगों को मिल जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए हम आए, इसलिए हम पर आप लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि मैं कुछ लेने के लिए नहीं, आप लोगों का जीवन सुखी बनाने के लिए, भारतीय संदेश देने के लिए आया। मां तमसा ज्योतिर्गमय, अंधकार की तरफ में मत जाओ, ये अंधकार है, ये सब मोह है, मोह, मोह से निकल करके ड्यूटी में आइए, अपने पत्नी को देखिए, ये भगवान की प्यारी है, बच्चों को देखिए, क्या ये भगवान के प्यारे हैं, उनके अंश हैं, मैं भी वही हूं, इसलिए उनका सपोर्ट कीजिए, पालन पोषण कीजिए, उनको अच्छी तरह से ज्ञान में ले जाइए, भगवत भक्ति उनको दीजिए। ये आजकल की शिक्षाएं हमें कहां पतन में ले जा रही हैं, आजकल देखते हैं कि सिगरेट पीते हैं वही हमारे प्रिंसिपल और प्रोफेसर और टीचर ही, वो क्या शिक्षा देंगे, उनका चरित्र ही नहीं अच्छा है, वो क्या देंगे। इसलिए ऐसी परंपराएं हैं, इसमें संत लोग जो है, जो भजन किए हैं, उनकी बातों को मान करके थोड़ा सा चलिए। यह राजनीति जब तक कि धर्म नीति के द्वारा संचालित नहीं होगी, कंट्रोल नहीं होगी, जगत का विनाश करेगी। पहले ऐसा था, राजनीति धर्म नीति के द्वारा शासित होती थी और सब जगत का कल्याण, वो राम राज्य होता था। तो आप लोग भी राम राज्य में रहिए, राष्ट्र तो ऐसा नहीं हो सकता, व्यक्तिगत हो सकते हैं। इसलिए आज यहीं पर समाप्त करता हूं, आज से हमारा प्रवचन होगा कोई विष्णु मंदिर लटोका में, आप अनाउंस कर देंगे को, आप लोग सभी लोग वहां पर जाएंगे, हिंदी में बोलूंगा, दरिया का मत मुझे प्रणामी, अंत में आरती जब होगी तो प्रणामी एक एक पैसा या एक एक डॉलर दे, नहीं 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 कुछ नहीं देना पड़ेगा, कोई डरने की जरूरत नहीं, आप लोग आएंगे और स्वच्छंद हृदय से आएंगे, इसको सुनेंगे, अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको पालन करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, मैं अपनी टोकरी भरी हुई फिर वृंदावन में ले जाऊंगा, मैं सस्ते में बेचने की चेष्टा करूंगा, किंतु यदि कोई आजकल दूध नहीं बिकता है और घर घर में वहां दुकान पर मदिरा बिक जाता है, लाइन लगी जाती है एकदम, हमारे बच्चे आज इंडिया में अभी कोको कोला सीख रहे हैं, दूध नहीं पीते, कोको कोला फेंक देंगे, दूध फेंक देंगे, कोको कोला कहीं मैया से मांगेंगे। तो वैसे ही आप लोग इस धारा में आइए, भजन कीजिए, अपने घर की चीजें आप ही के पास में रहेंगी, आपका जीवन सुखमय हो उठेगा। एक कीर्तन कर अद्वैताचार्य जी से देने के लिए आए थे, आज उन्हीं का आविर्भाव तिथि है, आज उनके चरण में हम श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करते हैं।
वृंदावन बिहारी लाल की जय।
एक पिता का बेटा बहुत गुड़ खाता था और उसके बड़े फोड़े फुंसी निकल आए थे, सारे शरीर में फोड़े फुंसी, बहुत कष्ट बेटे को होता था। पिता बहुत तरह से समझाता था, बेटा मैया समझाती थी जो तू गुड़ मत खा,
नहीं तो ये तो मर जाएगा, इतना कष्ट तुमको हो रहा है, चारों तरफ में फोड़े फुंसियां होंगे। नहीं माना वो, तो वो अपने गुरु के पास में गए, उस बेटे को ले गए। गुरु जी आप तो सीधा महात्मा हैं, आप जरा कह दीजिए, हमारे बेटे को समझा दीजिए गुड़ न खाने, तो ये इसको फाड़ फुंसी बहुत हो रहे हैं। तो उन्होंने कुछ सोचा गुरु जी ने, और कहा जी परसों ले आना। तो परसों ले गए, तो परसों उन्होंने बेटे से कहा समझा करके, बेटे मीठा खाने से तुमको थोड़े फुंसियां हो रही हैं और बहुत कष्ट में है, इसलिए तू आज से छोड़ देना, मत खाना, ठीक है? तो उसने कहा जी ठीक, और सचमुच में छोड़ दिया। दो दिन दिन के बाद में वो ठीक होने लगा, धीरे धीरे ठीक हो गया। उसके पिताजी गुरु जी के पास में गए, गुरु जी से कहा जी गुरु जी अब पहले दिन ही क्यों नहीं कह दिया, जो दो दिन की देरी लगाई, वो तो अब ठीक हो रहा है। उन्होंने कहा कि देखो कहने से ही नहीं होता, कहीं पढ़ने से ही नहीं होगा, कैसे होगा? उस दिन तक मैं गुड़ खाता था, मिठाई खाता था, इसलिए मैं खुद ही खाता हूं, और फिर कहूंगा तो मेरी बात नहीं मानेगा। बात कब मानेगा? जब मैं जिसको प्रैक्टिस करता हूं उसमें सिद्ध हो चुका हूं। इसलिए भगवान का नाम ट्रांसडेंटल नाम है, पुस्तकों में पढ़ लिया वो भगवान का नाम नहीं होगा, नहीं होगा, वो शब्द ब्रह्म नहीं है। कहीं किसी ने ऐसे चलते कह दिया सुनिया राम राम, अरे वाल्मीकि जी ने तो मरा मरा कहा, देखो कैसे हो गए, और हम लोग सीधा ही कहते हैं कहां हो रहा है, मतलब क्या है? कोई ऐसा सिद्ध हो जो इस नाम करके सिद्ध हो, जिसको पक्का विश्वास है भगवान के नाम करने से हमारा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये जगत की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, पर जगत के भी, और इसी से हम नित्य सुखी होंगे। इसकी अनुभूति जिसने कर सका है उसके यहां से शुद्ध ब्रह्म शब्द ब्रह्म नाम लेना पड़े, तब इसमें होगा, यही रहस्य है। नहीं तो जहां तहां जैसे तैसे गली में इधर उधर सुन लिया, सिनेमा में सुन लिया, रामायण अभी देख लिया, अभी आप लोगों के सागर का रामायण आया था आपके यहां, तो उससे कितने आदमी चेंज हुए? हो सकता है कि सुनने के समय रो दिए हों, चेंज कितने हुए, ये होना मुश्किल। नारद जी ने अजामिल जैसे लोग को और उनको वाल्मीकि को सब कुछ चेंज कर दिया। तो वैसे कोई सिद्ध हो, हरिनाम शुद्ध करने वाले हों, भगवान के चरणों में जिनका प्रेम हो, भगवान का साक्षात नहीं करने वाले नहीं है तो करने वाले हों, अभी योग्य बन रहे हैं, ऐसे हों शुद्ध, जब वहां पर सुनेंगे तो ये पुष्ट शब्द ब्रह्म आपके हृदय में आए। अभी हम लोग नाम करते हैं, बीड़ी सिगरेट धुआं कसते हैं, कोई मांस भी खाते हैं, मांस माने क्या? मांस, मांग माने मुझे, स खादति, वो खाएगा जिसे हम अभी खा रहे हैं, अभी बकरी खा रहे हैं, बकरी आपको खाएगी, आप अभी मछली खा रहे हैं, मछली भी आपको खाएंगी, जरूर खाएंगी। मीट, एम ई ए टी, एम ई मी इट, जिसे हम अभी खा रहे हैं वो हमको मी हमको खाएगी, ये समझिए ये पक्का सिद्धांत, कोई उसे हमें रोक नहीं सकता। इसलिए इन चीजों पर ध्यान रखते हुए ऐसे सदगुरु हों, ऐसे लोगों की बात सुन करके, वो आपका जगत का कुछ भी नहीं चाहेगा, आपको चाहेगा ये देना चीज। इसलिए समझ बूझ करके ऐसे तैसे राम राम कहने से भी नहीं होगा। मन ना रंगायो, रंगाए जोगी कपड़े, केवल कपड़े रंगाने से तिलक और ये से गले में माला से नहीं होगा। उसमें बहुत से ठग रावण ने त्रिदंड वेश हमारा जैसा संन्यास बनाया, हम तो कपड़े भी पहने, वो कपड़ा नहीं, केवल रुद्राक्ष पहन करके दंड लेकर के वो करा, क्या भिक्षांग देही, भिक्षांग देही, और फिर क्या बोला, भिक्षांग देही, नहीं देगी तुम्हारा तुम्हारा पति नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा यदि हमारे पास नहीं आएगी भिक्षा देने। तो ऐसे ऐसे नहीं होगा, सचमुच में जिसको रियलाइजेशन कुछ हो, अनुभूति हो, जिसके शब्दों में दम हो, उससे लेकर के और सहायता लेकर के इसे गाइडेंस में हरि नाम कीजिए। थोड़े ही दिन भर करने की भी जरूरत नहीं है, हो जाएगा। इसलिए आज समय कितना, एक बज गया है करीब, आज यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। यदि हमारी कोई कड़ी और रुखड़ी बातें हो गई हैं, इफ आई हैव टोल्ड सो हॉर्स यू कैन फॉरगिव मी, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। और यदि अच्छी कोई बात है तो आप लोग इसको ग्रहण कर सकते हैं। गौर प्रमाण, आप लोगों को प्रसाद सबकी व्यवस्था किए हैं शायद, आप लोग प्रसाद पाइए और मुझे आदेश दीजिए, मैं भी प्रसाद लेकर के वहां पर जाऊंगा।